इस वर्ष पेरिस समझौते को 5 साल पूरे हो गए हैं। शनिवार को इसमें शामिल सभी देश एक वर्चुअल जलवायु सम्मेलन में एकजुट हो रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको इस सम्मेलन से, और ये किस तरह से अगले साल होने वाले COP26 की नींव रखने में मदद करेगा?
ये पांचवा जो सालगिरह है पेरिस अग्रीमेंट का, ये एक एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इस एक प्लेटफॉर्म से जो नए इरादे हैं, जो नए टारगेट्स बन सकते हैं, वो गरीब और अमीर देश आगे आकर कुछ बोल दें। ये इसका जो महत्वपूर्णता है इसमें कि ये एक नेगोशिएशन नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशंस में क्या होता है, फिर कंट्रीज कम बोलना चाहते हैं कि मैं कितना करूं और आप कितना करें, वो एक खिटखिट बन जाता है। इससे क्या हो सकता है कि एक स्टेज सेट हो सकता है कि अगले साल और 11 महीने बाद जब वो COP26 का जो एक्चुअल नेगोशिएशन होगा तो क्या मूड होगा। तो ये इसका प्लस साइड है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है। एटलीस्ट जो कहता हूं मैं, से अनड्यू प्रेशर बन सकता है, क्योंकि जो कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 2050 तक या 2060 तक जो टेक्निकल टर्म है, नेट जीरो बन जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये 30-40 साल बाद का एक इरादा है, प्रॉमिस है, आप जो भी मान लीजिए। लेकिन जो गरीब देश हैं, जो विकसित देश नहीं हैं, जिनमें अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया भी है उसमें, अफ्रीकन कंट्रीज भी है, एशियन कंट्रीज भी है, उनको एक कार्बन स्पेस अभी भी चाहिए बढ़ने के लिए। जितना भी उनमें उन देशों में क्लीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, फिर भी उनको एक कार्बन स्पेस चाहिए। अगर विकसित देश सोचे कि मैं 2050 का एक प्रॉमिस करके मैं चुप बैठ सकता हूं, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं इस समिट में फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि बिना पैसे के और सारे इरादे शब्द में ही रह जाते हैं।
आपने फाइनेंस की बात की, पॉलिसी की बात की, तो विशेष रूप से अगर बिजली और जल क्षेत्र की बात करें तो उसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हमें किस तरह के नीतिगत साधनों, कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी?
आप अगर भारत और साउथ एशिया के बारे में आप सोच लें, पिछले 10 साल से यहां पे दो टाइप के एनर्जी ट्रांजिशन हो रहे हैं। एक हो रहा है कि जो लाखों करोड़ों घरे थे जहां पे कोई बिजली नहीं था या कोई क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं था, वहां पे एनर्जी एक्सेस आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के नीचे SDG 7 कहा जाता है, एक्सेस टू एनर्जी। दूसरा जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है वो है डर्टी एनर्जी से क्लीन एनर्जी की तरफ। 10 साल पहले भारत में 20 मेगावाट भी सौर ऊर्जा नहीं था, आज सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा मिला के कुछ 90,000 मेगावाट है। अगर आप लार्ज हाइड्रो इसमें इंक्लूड कर लें तो 101,35,000 मेगावाट है। भारत का एम्बिशन है कि 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिप्लॉय किया जाए। बांग्लादेश में रूफटॉप सोलर का एक रेवोल्यूशन बन चुका है, लाखों लाखों घरों में रूफटॉप सोलर लग चुके हैं। भूटान तो है ही हाइड्रो पावर सुपर पावर, नेपाल भी इसका कंसिडरेशन में। तो अब किस टाइप का नीति जो हमें 2000 या 2010 से आज तक लाया है, और किस टाइप का नीति आज से आगे तक ले जाएगा, उसमें एक बदलाव आना है। एक जो चेंज होना पड़ेगा वो है सप्लाई साइड पॉलिसी से डिमांड साइड पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक जो नीतियां थी वो प्राइमरीली ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसमें टेंडर्स इशू करते थे, बिडिंग होता था और प्रोजेक्ट डेवलपर्स आते थे, बिड करते थे टेंडर पे, और वो रिवर्स ऑक्शन के बेसिस पे सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा के प्राइसेस घटते रहे, और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक सप्लाई साइड पुश है कि आप बना लो अक्षय ऊर्जा कैपेसिटी, कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया सामने, तो फिर क्या करें? तो वहां पर वो डिमांड साइड का आ जाता है। तो हम कैसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, जिसे कहते हैं आरपीओ, उनको और रोबस्ट बनाए ताकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज करे कि हम अब इतना प्रतिशत, आज अगर 10% है, 2 साल बाद 15%, उसके बाद 20%, कि हम हमारा जो ऊर्जा हम खरीदेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा। वैसे ही इंडस्ट्रीज को भी बोला जा सकता है, आज ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी भी कर सकते हैं कि आप अगर ऊर्जा ले रहे हो आपको एटलीस्ट 15% या एटलीस्ट 20% आपको रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना पड़ेगा। आप घरों में भी जा सकते हैं, मेरी संस्था काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर दिल्ली के यूटिलिटी कंपनीज के साथ एक हम कैंपेन चला रहे हैं सोलराइज करके, कि डिफरेंट रेजिडेंशियल एरिया में हम कैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बात करें और वहां पर एक डिमांड क्रिएट करें रूफटॉप सोलर के लिए। तीसरा जो क्रिटिकल चीज है वो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। आज हम भारत में 80% या 85% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 85% 90% सोलर पैनल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। 4.5 लाख मेगावाट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिप्लॉय कर रहे हैं और वो भी सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें एक कंसर्न बन जाता है और उस एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए फिर गवर्नमेंट्स कॉशियस बन जाते हैं और फिर कहेंगे नहीं, लेट्स गो स्लो। तो हम कैसे ये जो डिप्लॉयमेंट का टारगेट है उसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग का भी एक पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी बनाए जो कंसिस्टेंट विद ट्रेड रूल्स हो, जो लॉन्ग टर्म हो, क्लियर हो, इंसेंटिव्स क्लियरली डिस्क्राइब्ड हो उनमें, ताकि एटलीस्ट 20% 30% ऑफ आर इंपोर्ट्स हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से सपोर्ट कर सकते हैं। इक्वली पानी की सिंचाई के लिए फॉर इंस्टेंस एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो अगर हम अपने इलेक्ट्रिक, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स को सोलर बेस्ड पंप्स से रिप्लेस कर दें तो वो एक और एक रेवोल्यूशन बन सकता है।
हमने ऊर्जा की बात की, जल की बात की, परिवहन क्षेत्र की बात करते हैं। क्या भारत परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए ट्रैक पर है अगले 5 वर्षों में ई मोबिलिटी और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं?
परिवहन का सेक्टर ले लें, उसमें आप रेल ट्रांसपोर्ट लीजिए, रोड ट्रांसपोर्ट लीजिए, फिर शिपिंग और एविएशन लीजिए। शिपिंग एंड एविएशन में अभी नॉर्दर्न यूरोप के विकसित देशों में काफी कुछ इनोवेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फेरीज बन रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, ऐसे जगहों में। एविएशन में वहां तो हो रहा ही है, लेकिन इंडिया में भी थोड़ा बहुत रिसर्च हो रहा है, हम भी इसमें काम कर रहे हैं कि एविएशन बायोफ्यूल्स कैसे किया जाए। लेकिन ये तो सेक्टर्स को छोड़कर अगर आप सिर्फ रेल और रोड पे फोकस करें, और कुछ सालों में, मतलब कि इस दशक में, भारतीय रेल उस स्केल का पहला रेलवे नेटवर्क होगा दुनिया में जो पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसके ऊपर एक और एम्बिशन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रेन्स चल रहे हैं उसमें सौर ऊर्जा का कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए। हमारे कैलकुलेशंस कहते हैं कि एटलीस्ट 25% ऑफ ट्रैक्शन एंड नॉन ट्रैक्शन पावर चाहिए होता है ट्रेन्स के लिए, वो सौर ऊर्जा से आ सकता है, दैट इज ह्यूज। अब रोड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, इसमें ऑलरेडी भारत ने ऐलान किया हुआ है कि काफी मोमेंटम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें क्लीनर व्हीकल्स की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, उसमें क्लीन फ्यूल भी होगा जो जैसे BS6 यह सब हुआ, लेकिन उसके ऊपर हाइब्रिड व्हीकल्स का भी एक रोल है मार्केट में, CNG व्हीकल्स का भी रोल है मार्केट में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ देख लें, 30% अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 में, मतलब कि 2030 में अगर 30% ऑफ व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो ये डबल ट्रांजिशन अगर परिवहन क्षेत्र में हो, रोड ट्रांसपोर्ट में, उसके ऊपर जो रेल्स का हो रहा है, और उसके ऊपर अगर एविएशन बायोफ्यूल्स का हो जाए, तो ये एक नया एक दौड़ बन सकता है क्लीन एनर्जी की तरफ, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी।
इस ट्रांजिशन के लिए और 2030 तक भारत को स्वच्छ ऊर्जा के 450 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी बड़े निवेश की जरूरत है। हरित निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं आपकी नजर में?
कुछ एस्टिमेशंस में है कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो आज भारत का जीडीपी है, उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ये क्लीन एनर्जी सेक्टर्स की तरफ। टारगेट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एक डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेट करता है डेवलपर्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए, लेकिन टारगेट्स आर नॉट इनफ। आपको पॉलिसी चाहिए विच आर क्लियर एंड कंसिस्टेंट। तीसरा, मैंने पहले भी बोला था, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम करना है। ऊर्जा का जो एक्सपेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो मार्केट में नॉन कंपेटिटिव बन जाते हैं, और यही लघु उद्योग हमारे 40% एक्सपोर्ट्स के लिए, 45% एक्सपोर्ट्स करते हैं भारत के। तो ये हमारा एक बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का, लेकिन इनके पास फाइनेंस नहीं है क्योंकि ये छोटे बिजनेसेस हैं। इनके पास फाइनेंस नहीं है कि वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाएं, ताकि उनका एनर्जी यूज भी कम हो जाए और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाए और उनका कंपेटिटिवनेस बढ़ जाए। तो उनको कैसे लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल दे सके हम, ताकि ये ऐसे क्लीन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके। इसके ऊपर बिहेवियरल चेंज, क्योंकि आज आप सौर ऊर्जा का सोचेंगे वो कहीं राजस्थान के डिजर्ट में एक बड़ा सा प्लांट बना होगा, या मध्य प्रदेश में बड़ा सा प्लांट बना होगा, या तमिलनाडु में एक विंड टर्बाइन कहीं लगा होगा। लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने सोलर रूफटॉप लगा दिया और 2 महीने बाद कहा कि यार मेरा बिजली का बिल तो आधा घट गया है, 2 साल बाद कहा मैं तो अब बिजली का बिल ही नहीं दे रहा हूं, मैं बिजली वापस सप्लाई कर रहा हूं, तो आपको भी लगेगा मैं भी यह कर सकता था। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन को नागरिकों के नजदीक लाना बहुत जरूरी है, ये बिहेवियरल चेंज के लिए।
पूरी दुनिया इस वक्त कोविड महामारी से जूझ रही है। क्या कोविड-19 से कुछ सबक मिले हैं जिन्हें जलवायु कार्रवाई से बेहतर तरीके से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
जैसे इस टाइप का महामारी 100 साल में पहली बार हुआ है, स्पैनिश फ्लू के बाद। वो अगर हो जाए तो सब तबाही हो जाता है। क्लाइमेट रिस्क भी ऐसा ही है, ये एक टेल एंड रिस्क है। एवरेजेस में 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखें कि साइक्लोन अम्फान जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को इस साल हिट किया था, वो 1582 के बाद सिर्फ 3 बार उस स्केल का सुपर साइक्लोन आया है। महाराष्ट्र में 2 हफ्ते उसके, दो अम्फान के 2 हफ्ते बाद साइक्लोन निसर्ग आया। केरल के फ्लड्स वंस इन 100 ईयर, चेन्नई के फ्लड्स वंस इन 100 ईयर। लेकिन इन टाइप के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, जो टेल एंड रिस्क हैं, वो अब ज्यादा फ्रीक्वेंट बन रहे हैं, वो और इंटेंस बन रहे हैं। तो ये महामारी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमें अब रिस्क का फोकस करना चाहिए, एवरेजेस का नहीं। तो इसमें नंबर 1, क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाना पड़ेगा। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ऐसा क्लाइमेट रिस्क एटलस आज नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो एनालिसिस दे पाए। सेकंड, उस क्लाइमेट रिस्क एटलस के बेसिस पे हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इमरजेंसी सर्वेलेंस मैकेनिज्म जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके क्लाइमेट रिस्क के बारे में वो हो। तीसरा, एक यूनिफाइड रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें पब्लिक और प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में जुट जाएं। जैसे फुकुशिमा अर्थक्वेक हुआ था जापान में, उसके बाद स्कूल के करिकुलम बदल गए थे कि अर्थक्वेक के बाद जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर नेशनल और स्टेट जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उनको बदलना पड़ता है, उनको अपग्रेड करना पड़ता है। और 5वां स्टेप, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम रिस्क समझेंगे तभी हम रेजिलिएंट बन सकेंगे। रिस्क और रेजिलियंस एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। तो अगर हम ये महामारी का ये लेसन सीख लें कि ये मत सोचो कि ये कभी नहीं होने वाला, लो प्रोबेबिलिटी है, नहीं, अगर हम रिस्क लेंस ले लें उसका कि नॉट जस्ट होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और उसके बेसिस पे क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाए, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्वेलेंस सिस्टम बनाए, यूनिफाइड रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क बनाए, एक्शन प्लान्स चेंज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट बनाए, तो हम क्लाइमेट रिस्क के अगेंस्ट और रेजिलियंट बन सकते हैं।